हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 13 14 15 16 एंड 17। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं युधस्यो भयतोन्तरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमात् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविद सुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरातहूणा दपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भा यवनाघसादया येने च पापा यदपाशयाशया शुध्यन्ति तस्मै प्रभवेश्वरे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसितिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा धुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभो निर्मायशीति यदमूषु पुरुष भुङ्क्ति गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यां यन्मुखाम्बुरुहासवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुधीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरे स्कंद पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। तो हमने देखा कि नारद मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि का आधार क्या है, क्या सृजन आप अपने बल पर करते हैं या आपको भी कोई शक्ति प्रदान करता है, इस आप किसके अंडर में रहकर कार्य करते हो, क्योंकि जब आपको मैं देखता हूँ तो आप साधना में लीन होते हो। तपस्या तो वही करते हैं जो जिससे कोई श्रेष्ठ होता है, तो क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, उसके विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के इन प्रश्नों को सुना तो सबसे पहले तो बहुत प्रशंसा की कि आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे हैं वो वास्तव में आपने आपकी करुणा है हम सब जीवों पर, मेरे पर भी और समस्त जीवों पर भी, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मुझे बहुत ही बारीकी से भगवान के विषय में सोचना पड़ेगा और फिर प्रेरित होकर फिर जो उत्तर आएगा वो केवल भगवान के गुण रूप नाम की महिमा के विषय में होगा। इसलिए इसको श्रवण करके समस्त जीवों का कल्याण होगा। और फिर बाद में बताया कि आपने जो मेरे विषय में सोचा वो असत्य नहीं था, वो तो सत्य है कि मैं सृजन करता हूँ, लेकिन सृजन मैं अपने ओर से नहीं करता हूँ। ये तो जो अल्पज्ञानी जीव होते हैं वो मोहित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक उनकी बुद्धि जाती है वो उन्हीं को परम मानने लगते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद ने कुएं के मेंढक की मिसाल दी थी, और उसी तरह से जो बेवकूफ लोग होते हैं वो परम सत्य भगवान को नहीं जानते, फिर जहाँ तक उनकी नजर जाती है वो समझते हैं वही परम सत्य है। और ब्रह्मा जी बोलते हैं कुछ तो बुद्धिमान होते हैं, दुनियावी लोगों से ऊपर देवता, देवताओं से ऊपर ब्रह्मा तक पहुंचते हैं और ब्रह्मा समझते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा महान है। लेकिन वास्तव में मेरा तो सिर्फ इतना ही कार्य है कि भगवान के तेज में से कुछ प्रकाश प्राप्त करके मैं समस्त ग्रहों को सृजन करता हूँ, सब कुछ सृजन करने की शक्ति जो है वो मैं भगवान से प्राप्त करता हूँ। भगवान द्वारा अपने निजी तेज से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की यथार्को निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृह तारका। सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा आकाश प्रभावशाली गृह तथा टिमटिमाते हुए तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो इसके बाद अब ब्रह्मा जी भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान से यह याचना करते हैं, भगवान का ध्यान करते हुए, कि आप सदैव मुझ पर कृपा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और क्योंकि भगवान की माया बहुत ज़्यादा प्रभाव करने वाली है, दुर्जय है, उसलिए उस शक्ति से, माया शक्ति से मुझे सुरक्षित कीजिए ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुरज्यया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुरज्यया मां वदन्ति जगद्गुरुं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुरज्यया मां वदन्तिं जगद्गुरुं। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं तस्मै, तस्मै मतलब उनको, उनको तो किनको, जिनके विषय में वो पहले कह चुके हैं कि वास्तव में ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयामहम, ये जो तेज है जिनके द्वारा जिनका अपना निजी तेज ये ब्रह्म ज्योति है, उसी से उन्होंने सृजन किया है, सब कुछ बनाया तो उन्होंने है, बट उन्हीं के दिए हुए तेज से, उन्हीं के दी हुई पावर से मैं सृजन करता हूँ। तो वो कौन है उसका नाम बताते हुए आज कह रहे हैं कि वो और कोई नहीं है बल्कि कौन है, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर साफ साफ साक्षात ब्रह्मा जी जो कि आदि जीव हैं, उनसे पहले और कोई नहीं है, वो आज हमें भगवान से अवगत करा रहे हैं। वो भगवान जो वास्तविक सृष्टि करता है, वो भगवान जिन्होंने प्रत्येक वस्तु का सृजन किया है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक भूमंडल, प्रत्येक यूनिवर्स, प्रत्येक ब्रह्मांड के जो आधार हैं, उन भगवान का नाम बता रहे हुए कहते हैं, मैं तो उन भगवान वासुदेव के धीमहि का मतलब होता है उनका ध्यान करता हूँ। ये भगवान का ध्यान करना अत्यंत ही लाभदायक है, अत्यंत ही पावर वाला है। ये जो ध्यान है ना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, वो किसी न किसी के विषय में विचार करती रहती है, उसका कार्य ही है कंटिन्यूस विचार करना। अब देखो, आप कभी सो भी रहे हो ना, तब भी बुद्धि कुछ न कुछ सोच रही होती है। आप आराम कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है आज संडे है, मैं पूरा दिन आराम करूंगा, तो क्या मन और बुद्धि आराम कर रहे होते हैं? वहां पर तो विचार चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि आप बैठो भगवान का नाम जप करने के लिए, चैंटिंग भी करो ना, तो उस टाइम पर भी बुद्धि कुछ न कुछ विचार कर रही है। लेकिन भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु जो विचार की जा रही है, उसी के द्वारा बुद्धि मलिन हो गई है। और उस बुद्धि को किस तरह से पवित्र किया जाए, क्योंकि बुद्धि अगर अपवित्र हो गई, मलिन हो गई, बिगड़ गई, तो ये बुद्धि तो वो सारथी है जो हमारे पूरे शरीर को, शरीर के रथ को चला रही है। और अगर वो सारथी ही बिगड़ गया तो हमारा ये शरीर रूपी रथ ना जाने किस तरह से एक्सीडेंट करके किस गटर में गिरेगा, उसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं अपनी बुद्धि से उन भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ, उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, उन्हीं को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी केवल भगवान को नमस्कार करके, भगवान का ध्यान लगा के यह संपूर्ण जगत की सृष्टि कर रहे हैं। संपूर्ण जगत की रचना का इतना भयंकर कार्य वो और आज का ये मूर्ख जीव सोच रहा है कि भगवान से विलग होकर, भगवान से दूर होकर मैं कुछ कार्य कर सकता हूँ। नहीं, जीव के अंदर क्षमता जो भी है वो भगवान के द्वारा आती है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे हैं कि कोई भी कार्य करो तो भगवान का ध्यान करके। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुरज्जया। यन मायया यानी ये जितनी भी माया शक्ति है, दुरज्जया ये दुर्जय है, लेकिन ये किसकी है? यन मतलब उसी की है। ये भगवान कृष्ण की माया है। भगवान श्री कृष्ण 7.14 में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। उसी बात को यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, यन मायया दुरज्जया माम वदन्ति जगत गुरु। इनकी माया इतनी दुर्जय है। माम वदन्ति, माम यानी मुझको, वदन्ति मतलब मुझको भी कहते हैं जगत गुरु, इस जगत के स्वामी। मानव ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो सब कुछ उनकी ही कृपा से, उनके ध्यान से, उनकी शक्ति से कर रहा हूँ, लेकिन उनकी माया इतनी दुर्जय है कि इतना सबको प्रभावित कर देती है कि जीव मुझे ही परम नियंता कहते हैं। अनुवाद देखिए, मैं उन भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें यानी अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह से प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि जैसा कि अगले श्लोकों में अधिक स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को भगवान की शक्ति इस तरह से मोहित करती है कि वह ब्रह्मा जी को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठता है, किंतु ब्रह्मा जी को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। वे भगवान वासुदेव या श्री कृष्ण को उसी तरह से सादर नमस्कार करते हैं जिस तरह उन्होंने ब्रह्म संहिता 5.1 में उनका अभिवादन किया। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम्। अर्थात ईश्वर परमः कृष्ण, परमेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिद आनंद विग्रह जो अपने दिव्य शरीर में आदि भगवान है, अनादि आदि गोविंद वो समस्त कारणों के कारण है, मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि इस तरह से अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी जैसे जो महान जीव होते हैं वे भगवान की शक्ति को जानते हैं, वे इस तरह इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रामक शक्ति द्वारा मोहित होकर एक को अपनी सनक के मुताबिक ही ईश्वर मान लेते हैं। ये सब भगवान की ही शक्ति है, क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा होती है कि भगवान को नहीं मानना चाहता, तो भगवान कहते हैं 7.21 में, यो याम याम तरुम भक्ते श्रद्धया तृप्यतु इच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धा तामेव विदधामि अहम्। जो जिस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसी के अनुसार उसको श्रद्धा प्रोवाइड करता हूँ जिससे वो उसी पर्टिकुलर देवता की भक्ति कर सके। तो ये केवल भगवान की माया है। तो ब्रह्मा जी जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत प्रफुल्लित होते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी एक अत्यंत ही गूढ़ बात कह रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होगा ना, उसे कभी भी अपनी प्रशंसा पसंद नहीं आएगी। महानता कब दिखती है? जब जीव अपने आप को निम्न समझता है। महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीतेन, राह में गिरे हुए तिनके से भी जो अपने आप को तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, वही भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति दृढ़ता से कर सकता है। तो जो महान व्यक्ति या महान भक्त होते हैं, उनको कोई इच्छा नहीं होती है कि कोई भगवान समझकर उनकी प्रशंसा करे, लेकिन जो जानवरों जैसी वृत्ति रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनको भगवान समझकर पूजा जाता है। ऐसे लोग ईश्वर कहलाने या मूर्ख प्रशंसकों द्वारा ईश्वर कहकर पुकारे जाने पर क्यों प्रफुल्लित होते हैं, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, विलज्जमानयायस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ति ममाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानयायस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ति ममाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानयायस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विकथन्ति ममाहम् इति दुर्धिया। विलज्जमानयायस्य, विलज्जमानया मतलब लज्जित व्यक्ति द्वारा, यस्य जिसका, स्थातुम ठहरने के लिए, ईक्षापथे यानी समक्ष, अमोया मतलब भ्रामक शक्ति द्वारा। यहाँ पर भ्रामक शक्ति यानी माया की बात की जा रही है कि भगवान की ये माया, क्योंकि भ्रामक शक्ति है, मोहित करने वाली है, तो उसकी जो स्थिति है वो अपनी स्थिति से बहुत ज्यादा लज्जित है। मतलब माया शक्ति जानती है कि मैं जीव को भगवान से विमुख करने वाली हूँ, इसलिए वो अपने ही विलज्जमानया लज्जित रहती है वो हमेशा, और इस कारण वो कभी भगवान के समक्ष आ नहीं सकती है। भगवान सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, या हर कृष्ण ताहर नाही माया अधिकार। तो जहाँ पर कृष्ण का नाम होता है, कृष्ण की सेवा होती है, कृष्ण का ध्यान होता है, वहाँ पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं माम एव यो प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। वैसे तो मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वे उसे सरलता से पार कर जाता है। इसे यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं विलज्जमानयायस्य स्थातुमीक्षापथे मुया, कि ये माया जो है वो भगवान से हमेशा लज्जित रहती है और भगवान के सामने कभी भी नहीं आती, लेकिन विमोहिता विकथन्ते जो इस माया के वश में आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं, जो भगवान के समक्ष नहीं आते, जो भगवान को प्रणाम नहीं करते, भगवान का नाम जप नहीं करते, भगवान की शरण में नहीं आते, क्योंकि जब वो भगवान की शरण में आते हैं फिर तो माया उन पर कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो भगवान के दर्शन नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, वे विमोहिता, वो माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। और फिर विकथन्ते, विकथन्ते मतलब प्रलाप करते हैं, कथन्ते का मतलब होता है बात करना, विकथन्ते का मतलब होता है बकवास करना, और वो क्या बोलना शुरू हो जाते हैं, ममाहम मम अहम, ये मैं हूँ और ये मेरा है, मम मना ये मेरा है और अहम मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। जो ऐसा बोलता है कि मैं सब कुछ हूँ और यह सब कुछ मेरा है, उसके लिए कहा गया है वो मोहित हो गया है, वो प्रलाप कर रहा है, इस तरह से बला बुरा कह रहा है, दुर्धियः इस प्रकार बुरा सोचा गया है, मतलब वो इस संसार का सबसे बड़ा बेवकूफ है जो कि किसी वस्तु को अपना या इस शरीर को मैं मानता है। ये सबसे बड़ी वास्तव में जीव की दुर्दशा है जब वो अपने शरीर को अपना मानता है और शरीर के साथ रिलेटेड जिन वस्तु जो वस्तु और व्यक्ति हैं उनको मेरा मानता है। और ये कब होता है? जब वो माया के द्वारा मोहित हो गया है। अनुवाद देखिए, भगवान की भ्रामक शक्ति यानी माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि भगवान की दुर्जय शक्ति, चलनी शक्ति या तीसरी शक्ति जो अज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, संपूर्ण जीवित जगत को मोहित कर सकती है, तो भी वह इतनी प्रबल नहीं होती कि परमेश्वर के समक्ष ठहर सके। अविद्या तो भगवान के पीछे रहकर वहीं से जीवों को गुमराह करती है। मोहग्रस्त जीवों का मुख्य लक्षण है यह है कि वे व्यर्थ की बकवास करते हैं। यह व्यर्थ की बातें वैदिक साहित्य के सिद्धांतों से समर्थित नहीं रहती हैं और सबसे अधिक निकृष्ट बकवास यह है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ। ईश्वर विहीन सभ्यता ऐसे झूठे विचारों पर ही चलती है और ऐसे व्यक्ति ईश्वर की वास्तविक अनुभूति के बिना ही मिथ्या ईश्वर को मानते हैं या उन लोगों को जो पहले से ठगनी शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं, गुमराह करने के लिए अपने को ही ईश्वर घोषित कर देते हैं। किंतु जो भगवान के समक्ष रहते हैं तथा जो उनकी शरण ग्रहण किए रहते हैं उन्हें ठगनी शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं किए जा सकता, अतएव वे इस भ्रांत धारणा से मुक्त रहते हैं कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस तरह वे ना तो मिथ्या ईश्वर को स्वीकार करते हैं ना अपने को परमेश्वर के तुल्य कहते हैं। इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से बताई गई है। मतलब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में मोहग्रस्त व्यक्ति क्या है। मोह सबसे बड़ा यह है कि जीव भगवान से पृथक अपने किसी सत्ता को मानता है, ये मैं हूँ या मेरा है। नहीं, जीव का यदि कोई वास्तविकता है तो वो क्या है कि मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, भगवान भोगता है और मैं भोग्य हूँ। और जब जीव स्वयं को कुछ मानकर स्वयं को भोगता बनाता है, यह सबसे बड़ा मोह है, सबसे बड़ा ये भ्रांत है, ये भ्रांत धारणा है कि भगवान से पृथक भी जीव का कोई स्वरूप है या कोई अस्तित्व है। ये सबसे बड़ा मोह है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्योर्था स्थोस्ति तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो केवल और केवल भगवान वासुदेव की ही शक्ति है, चाहे वो पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो। द्रव्यम कर्म च कालश्च। द्रव्य का मतलब होता है इस भौतिक जगत में जो भी वस्तुएं हैं वो किससे बनी हुई हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इन पांच चीजों से मिलकर और मन बुद्धि अहंकार से मिलकर इस जगत की प्रत्येक वस्तु बनती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 7.4 में भगवान अपनी आठ प्रकार की भिन्ना प्रकृतियों के विषय में बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको द्रव्य कहा गया है और इसके अतिरिक्त कर्म यानी अन्योन्यो क्रियाएं, अब इनके द्वारा जो भी कार्य जीव होता है वो कार्य करता है, तथा काल, काल मतलब जो समय है वो, चाहे वो कर्म हो, समय हो या वस्तु हो, च स्वभाव, स्वभाव यानी जीवों के जो स्वभाव हैं वो सब क्या है, वासुदेवात परो, ये सब वासुदेवात यानी भगवान वासुदेव परम ना, उसके उसकी ही शक्तियां हैं, भिन्न अंश हैं उसके। ब्रह्मन, ये नारद मुनि को कहते हैं, हे ब्रह्मन जो कुछ भी देख रहा है वो भगवान की ही शक्ति है। और आगे कहते हैं, न चान्योर्थोस्ति तत्वतः, न चा न मतलब कभी नहीं, च मना भी अन्य मना पृथक, अर्थ, अर्थ मतलब महत्व, अस्ति है तत्वतः वास्तव में, वास्तव में किसी भी वस्तु का पृथक, अन्य मना पृथक और पृथक मतलब अलग, भगवान वासुदेव से अलग किसी भी द्रव्य का, कार्य का, काल का, स्वभाव का, किसी भी जीव का या जीव से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया का कोई भी महत्व नहीं है। हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम वो कार्य वो उसमें तभी तक इम्पोर्टेंस है किसी कार्य की, किसी वस्तु की, किसी भी चीज की, जब तक कि उसका संबंध भगवान से है, वरना फिर कोई भी कार्य है या वस्तु है उसका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसका महत्व कैसे रह सकता है। अनुवाद देखिए, सृष्टि के पांच मूल अव्यय शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्योन्य क्रियाएं तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश हैं। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यह घटनाओं से भरा हुआ जगत निर्विशेषता निर्विशेषतया वासुदेव की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसके सृजनकारी अव्यय जिनकी अन्योन्य क्रिया तथा फल का भोग जीव, ये सभी भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति या अंतरंगा शक्तियों द्वारा उत्पन्न है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 7.4 और 5 में हुई है। सारे अव्यय तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं इन्हीं के साथ भौतिक पहचान की अवधारणा, बुद्धि तथा मन भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होते हैं। शाश्वत काल द्वारा निर्धारित इन स्थूल तथा सूक्ष्म अवयवों का भोग करने वाले जीव अंतरंगा शक्ति की उपज है। अपरेयम इतस्त्वन्यान प्रकृतिम विद्धिमेत पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसे इस जगत में या वैकुंठ लोक में रहने की छूट दी गई है, ये जो जीव है ना वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और उसको पूरी छूट है कि वो वहां कहां पर रहना चाहता है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान से समझने योग्य है कि भौतिक जगत में जीव ठगिनी अविद्या से चला जाता है, किंतु वैकुंठ लोक में वह किसी भ्रम के बिना आध्यात्मिक अस्तित्व की अपनी सामान्य अवस्था में रहता है। इस भौतिक जगत में तो माया उसे प्रभावित करती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में माया नहीं होती है, वो अपनी वास्तविक अवस्था में होता है। वास्तविक अवस्था क्या है, जीवेन स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव को भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अव्यय और ना ही आध्यात्मिक भिन्नांश ही भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है। वो भगवान के ही कंट्रोल में है, चाहे भगवान की पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो, वो कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं है। उसको उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी कि भगवान ने दी है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं चाहे वे भगवान की बहिरंग अंतरंग या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हों, उसी तरह भगवान के तेज से प्रदर्शित हैं, जिस प्रकार प्रकाश, उष्मा तथा धुआं एक ही अग्नि के प्रदर्शन हैं। इनमें से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दे रहे हैं अग्नि का। अग्नि जो है उसी से प्रकाश निकल रहा है, उसी से गर्मी भी हो रही है और उसी से धुआं भी निकल रहा है, लेकिन प्रकाश, गर्मी, उष्मा यानी गर्मी तथा धुआं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अग्नि नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। उसी तरह यह भौतिक जगत में जो कुछ भी है, चाहे भगवान की अपराशक्ति हो, भगवान की पराशक्ति हो या भगवान की तटस्थ शक्ति हो, वो भगवान के ही आधार पर है। इनमें से कोई भी जिस तरह अग्नि से स्वतंत्र नहीं है या भिन्न नहीं है, उसी तरह से चाहे कोई भी शक्ति हो वो भगवान से भिन्न नहीं है, सभी मिलकर। इसी प्रकार सारी व्यवहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है, जबकि भगवान उपर्युक्त भौतिक अव्ययों की अवधारणाओं से सर्वथा पृथक सचित आनंद विग्रह के नामक अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही भौतिक जगत जो है उसमें जो कुछ भी है वो भगवान की ही शक्तियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान भौतिक अव्ययों की धारणा से स्वतंत्र, सर्वथा पृथक सचित आनंद विग्रह नामक अपने दिव्य रूप में सदैव रहते हैं और अपने दिव्य धाम में रहते हैं। और अब ब्रह्मा जी जो हैं, वो भगवान के विषय में बहुत ही डिटेल से बताएंगे कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। यानी प्रत्येक वस्तु के कारण उनके आधार भगवान है, तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपनी जितनी भी शक्ति है उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। और जीव का कोई कर्तव्य नहीं है, जीव का केवल एक ही कर्तव्य है कि वो अपनी संपूर्ण शक्तियों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा, नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका नारायण परामखा। नारायण परावेदा, वेद यानी जो भी ज्ञान है, जितना भी वेद है जितने भी, नारायण यानी परमेश्वर नारायण, परा यानी कारण स्वरूप तथा उसी के निमित्त, जितना भी ज्ञान है वो उसका कारण कौन है, वो भी भगवान है। ज्ञान के द्वारा जैसे भगवान बताते हैं, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदांत कृत वेद वेदो वचाहम, वेदों का रचयिता मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ, और वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं नारायण परावेदा। और नारायण देवा नारायणांगजा, देवा मतलब देवता है जितने भी, नारायणांगजा परमेश्वर के सहायक हैं, जितने भी देव हैं
वो सब भगवान के ही सेवा के लिए हैं। नारायण परालोका, नारायण यानी भगवान, परा मन उनके लिए, लोका सारे लोक भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं। नारायण परामखा, नारायण मतलब भगवान, परा मतलब उनको प्रसन्न करने के लिए, मखा मतलब सारे यज्ञ। अनुवाद देखिए, सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि वेदांत सूत्र अर्थात शास्त्रयोनित्वात् के अनुसार परमेश्वर समस्त प्रामाणिक शास्त्रों के रचयिता हैं और सारे प्रामाणिक शास्त्र उन्हीं परमेश्वर को जानने के लिए हैं। नारायण परावेदा, शास्त्रों का अर्थ ही यह है कि इनके द्वारा हम भगवान को जान सकें। और वास्तव में वेद जो हैं वो कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाता, ये भगवान की ही रचना है। तो वेद का अर्थ है भगवान विषयक ज्ञान। वेदों की रचना बद्ध जीव की विस्मृति चेतना को जागृत करने के लिए ही हुई है और ऐसा साहित्य जो इस चेतना को जागृत करने वाला नहीं होता है वह नारायण परा भक्तों द्वारा तत्काल ही त्याग देने के योग्य है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं कि वास्तव में वेद वह है जिसमें भगवान के विषय में जाना जा सके। ये भगवान ने वेद क्यों बनाए हैं? क्योंकि माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः स्मृति ज्ञान, माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवे रे कृपाये कले कृष्ण वेद पुराण। तो जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने ये वेद और पुराण बनाए। ये वास्तव में भगवान का जीव के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा कीमती जो उपहार है ना, वो ये शास्त्र हैं। और जीव को अपने बुद्धि से कार्य नहीं करना चाहिए, शास्त्रों को अवश्य पढ़ना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी जीव का कल्याण होगा। तो लेकिन यहाँ पर ये बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो शास्त्र ऐसे हैं जो भगवान के विषय में नहीं बताते, इस चेतना को जागृत करने वाले नहीं है, वह नारायण पर भक्तों के द्वारा तत्काल ही त्याग देने। जो व्यक्ति आपको भगवान के से प्रेम करना नहीं सिखाता है उसे दूर रहना चाहिए। जो संसार की ओर आकर्षित करता है उसे त्याग देना चाहिए। जो शास्त्र आपको भगवान से दूर करते हैं तो जो भक्त लोग होते हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिन ग्रंथों का लक्ष्य नारायण नहीं होता है, ऐसे ब्राह्मिक ग्रंथ ज्ञान नहीं है अपितु उन्हें कौओं के कीड़ा स्थान है, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। यहाँ श्री प्रभुपाद जी उन वैज्ञानिकों के बारे में बता रहे हैं कि जो ऐसे ग्रंथों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें भगवान के विषय में कुछ नहीं लिखा गया। तो ऐसे ग्रंथ के लिए यहाँ पर बताया गया है ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ ज्ञान नहीं अपितु उन कौओं की क्रीड़ा स्थल है। यहाँ जो भागवतम का जो दूसरा श्लोक है 1.2 उसमें भी यही बताया गया है, दूसरा स्कंद में नहीं बताया गया, पहले स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि वेद व्यास जी को कहते हैं कि आपने इतने सारे वेद लिखे हैं ना, तो अगर उन वेदों में भगवान की भक्ति नहीं है तो ये ग्रंथ कहलाने के या वेद कहलाने के योग्य नहीं है। वो तो कौओं के तीर्थ हैं, उनके ऊपर तो जो कौवे होते हैं ना, जैसे गंदगी खाने की हमेशा इच्छा होती है उनकी, कितनी भी अच्छी स्वस्थ जगह होगी ना वहां पर नहीं बैठेंगे, जहां पर कचरा होगा ना वहीं पर बैठेंगे। तो जो इस तरह के ग्रंथ होते हैं जिनमें भगवान के विषय में नहीं बताया गया वो कौओं के तीर्थ स्थान के हिस्से में कहा गया है, जो विश्व भर का जूठन खाने में रुचि रखते हैं। ज्ञान, विज्ञान या कला, उसका कोई भी ग्रंथ नारायण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, अन्यथा इसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान की प्रगति का यही साधन है। परम पूज्य विग्रह नारायण है। पूजन के लिए देवताओं को नारायण से गौण स्थान प्रदान किया जाता है, क्योंकि देवता तो विश्व के कार्यों की व्यवस्था में सहायक होते हैं। जिस तरह किसी राज्य के अधिकारियों का आदर इसलिए होता है क्योंकि राजा से उनका संबंध होता है, उसी तरह देवताओं की पूजा भगवान के साथ उनके संबंध के कारण होती है। भगवान से संबंध न होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति होता है वो साधारण होता है, उसके अपनी कोई क्वालिटी नहीं है कि बड़े बड़े लोग, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस होता है। अब ट्रैफिक पुलिस तो एक बहुत ही साधारण और कम सैलरी पाने वाला व्यक्ति है, लेकिन वो जब रोकता है तो बड़ा बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी गाड़ी भी जो है वो रुकनी पड़ेगी, क्योंकि ये रूल है ना, वो ट्रैफिक का जो रूल है कि भाई रेड लाइट पर रुकना है। तो वो लाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा उसको यह उसको ये पोजीशन दी गई है, इसीलिए सब उसका आदर करते हैं। तो देवताओं की अपनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि क्योंकि भगवान के साथ इनका संबंध है और भगवान के कार्यों में ये सहायक हैं, इसीलिए भगवान से संबंधित होने के कारण उनकी इम्पोर्टेंस है। भगवान से संबंध ना होने पर देवताओं की पूजा अनुचित है। अविधि पूर्वकम, भगवान कहते हैं भगवत गीता 9.23 में, ये अप्यन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और श्रद्धा से उनको पूजते हैं, वो भी मुझे पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वकम्। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के वृक्ष की जड़ को ना सींचकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों को सींचना, अतएव सारे देवता भी नारायण पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न लोक इसीलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनमें तरह तरह का जीवन है तथा आनंद है, जो सचित आनंद विग्रह की आंशिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञान में जीवन चाहता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर एक इंसान की क्या इच्छा होती है, कि आनंद वाला जीवन हो, ज्ञानमय जीवन हो, शाश्वत जीवन हो। तो यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है नारायण परावेदा, उसके विषय में यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय जीवन चाहता है, और वेदों में बताया गया है कि भौतिक जगत में ऐसा आनंद तथा ज्ञानमय शाश्वत जीवन उच्चतर लोकों में ही संभव है, है ना, कि इस ज्यादा पुण्य करो और ऊंचे लोकों में जाओ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वतः। लेकिन वहां तक पहुंचने पर वह भगवत धाम जाने के लिए उन्मुख हो सकता है, क्योंकि आगे जाएगा तो उसके क्या लगेगा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम इच्छन्ति, स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग से भी उसे वापस नीचे आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन की अवधि यानी आयु भी आनंद तथा ज्ञान की मात्रा के अनुपात में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अधिक हो सकती है, है ना? दूसरे ग्रहों में हो सकता है जीवों की अवधि ज्यादा हो, ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा आनंद हो, ज्यादा शाश्वत समय तक, ऐसे भगवान बताते। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, स्वर्गलोक में विशाल समय तक जीव को रहने के लिए दिया जाता है। ब्रह्मलोक का समय अत्यंत ही विस्तारित होता है। लेकिन यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह में अवधि और मात्रा अधिक हो सकती है। विभिन्न ग्रहों में जीवों की आयु हजारों लाखों साल तक बढ़ सकती है, किंतु शाश्वत जीवन कभी नहीं है। एक न एक दिन आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। क्षीण पुण्य मृत्यु लोक मिशन्ति 8.16 में भगवान कहते हैं, आभ्यम भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुन, परंतु माम उपेत तो कौनते या पुनर्जन्म अविद्यते। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु जो व्यक्ति सर्वोच्च लोक अर्थात ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है, वह वैकुंठ लोक जाने की कामना कर सकता है जहां जीवन शाश्वत है। क्योंकि ब्रह्मलोक में भी जाने के बाद आना पड़ेगा, इसलिए जीव जो है वो अनेक अनेक बार 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 अलग अलग जगहों पर जाकर पुनरपि जननी जठराशयनम बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने के बाद अगर वो बुद्धिमान है तो वो यही सोचेगा कि अब मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो वहां जाना जहां पर से वापिस जन्म ना ले वहां जाने की इच्छा करना ही बुद्धिमानी है, वहां पर जहां पर जीवन शाश्वत है। अतएव एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा का अंत भगवान के परम लोक यानी मध्यम पहुंचने पर हो जाता है, जहां जीवन शाश्वत है और ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। इतने सारे यज्ञ किए जाते हैं। अब श्री रूपा जी यज्ञों के विषय में बता रहे हैं, नारायण परामखा। तो इतने सारे यज्ञ किए जाते हैं, वे भगवान नारायण को प्रसन्न करने उन तक पहुंचने के लिए किए जाते हैं, और इस कलयुग के लिए इस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की संस्तुति की गई है। वह संकीर्तन यज्ञ है जो नारायण पर भक्तों की भक्तिमय सेवा का मूल आधार है। इस कलयुग में एक ही यज्ञ है। भगवान कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन का जो जप है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है, इसलिए हम सबको इस महान यज्ञ को करना चाहिए। सदैव भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण परावेदा, वेदों में सबसे ज्यादा वेदों का कारण क्या है, भगवान को जानना। देवा नारायण अंगजा, जितने भी देवता हैं वो भगवान नारायण की सेवा के लिए हैं। नारायण परालोका, लोका मतलब जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ऐसी जगह ऐसा लोक जहाँ जो शाश्वत है, जहाँ पर आनंद शाश्वत है, वो लोक कौन सा है, भगवान का लोक। तो नारायण परालोका और नारायण परामखा, समस्त यज्ञों का कारण है भगवान को प्रसन्न करना, और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति नारायण परो योगो। नारायण पर मतलब नारायण को जानने के लिए योग यानी मन की क्रियाएं। आजकल जीव योग साधना करते हैं और उनका कारण क्या होता है, उनका लक्ष्य होता है अपने शरीर को फिट बनाना, है ना। अपने शरीर को फिट बनाने के लिए योगा किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण परा योगा, योग का मकसद है भगवान को प्राप्त करना। योग यानी भगवान के साथ एकाग्रता, मन की एकाग्रता होनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का साधन है योग, फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक योग का जो लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। नारायण परम तपा, नारायण मतलब नारायण को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही तपस्या की जाती है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, कोई सोमवार को व्रत रखता है, कोई मंगलवार को रखता है, कोई बुधवार को रखता है, कोई थर्सडे को रखता है, कोई किसी दिन रखता है, कोई किसी दिन, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता है भगवान को प्रसन्न करने का। वो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही उपवास रखते हैं, लेकिन तपस्या का जो उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीव तपस्या करता है। जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान से कुछ चाहिए नहीं होता है, वो हर महीने में दो एकादशी रखते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण तपस्या है कि पूरा दिन हर 15 दिन के बाद जो है एक दिन भक्तजन जो है वो फल फ्रूट्स ही खाते, अनाज नहीं खाते। और उस किसके लिए करते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो वास्तव में समस्त जो तपस्या है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए। और सच बात तो ये है भक्तों कि जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो और कुछ प्राप्त करने के लिए रह ही नहीं जाएगा। नारायण परम ज्ञानम, नारायण मतलब भगवान ही, परम ज्ञानम, परम का मतलब होता है उस परम पुरुष भगवान को समझने के लिए। ज्ञानम, ज्ञानम मतलब दिव्य ज्ञान की संस्कृति, जितना भी ज्ञान है उसका लक्ष्य है भगवान को समझना। वास्तव में ज्ञान के द्वारा भगवान को समझा नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ श्री प्रभुपाद बोला नारायण की झलक पाने के लिए कि एटलीस्ट अनुभूति हो जाती है कि वो भगवान कौन है। इन भौतिक ज्ञान से, वेदों के अध्ययन से, तपस्या करने से, दान देने से, इनसे भगवान को समझा नहीं जा सकता, लेकिन एक छोटी सी झलक प्राप्त हो सकती है। नारायण परा गति, नारायण के धाम में प्रवेश करना ही मोक्ष का पथ समाप्त हो जाता है। गति का मतलब होता है, गति का मतलब होता है लक्ष्य। हम बोलते ना आपकी इसकी सदगति हो या इसकी दुर्गति हो, वास्तव में सदगति क्या है कि जीव को भगवत धाम प्राप्त हो जाए, उसका लक्ष्य उसे मिल जाए। तो नारायण पराम गति, वास्तविक जीव का लक्ष्य जो है वो भगवान नारायण के धाम तक पहुंचना है। और गति का एक मकसद होता है कि स्पीड है ना, तो वास्तविक स्पीड जीव की क्या है कि हम उस रास्ते पर दृढ़ता से चलते रहें जो कि भगवत धाम तक लेकर जाने वाला है। अनुवाद देखिए, सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ही है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। यदि दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। श्रीला प्रभुपाद बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने कहा नारायण परा योगो, योग का मतलब होता है संबंध जोड़ना, और यहाँ पर योग का मतलब होता है जो योग साधना की जाती है ना उसके विषय में, जैसे ध्यान योग किया जाता है। तो शीला प्रभुपाद जी यहाँ पर उसी के विषय में बता रहे हैं कि ध्यान योग की दो पद्धतियां हैं, दो तरह से ध्यान योग किया जाता है, एक तो अष्टांग योग, दूसरा सांख्य योग। अष्टांग योग में क्या होता है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास होता है जिसमें ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि की विधियों से अपने को समस्त व्यस्तताओं से मुक्त कर लिया जाता है। अष्टांग योग में ध्यान, धारणा, समाधि इस तरह से लीन होना होता है, और लीन किस में होना होता है, भगवान के ब्रह्म ज्योति में। और सांख्य योग क्षणिक और सत्य का अंतर बताने वाला है। सांख्य योग क्षणिक है, मतलब सत्य का अंतर कैसे बताया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, भगवान के अंश हो, इस तरह से। लेकिन दोनों ही पद्धतियां अंततोगत्वा निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के लिए हैं, जो भगवान नारायण की आंशिक अभिव्यक्ति है। निर्विशेष ब्रह्म क्या है, भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा। निर्विशेष ब्रह्म साक्षात भगवान पर ही स्थित है, फलस्वरूप ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की महिमा गायन है। तो ये जो कुछ भी है ब्रह्म जो है वो भगवान की महिमा का ही गायन है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता तथा मत्स्य पुराण दोनों में होती है। गति शब्द चरम गंतव्य या मोक्ष का की अंतिम स्थिति का सूचक है। नारायण परम गति, अंतम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की अंतिम स्थिति जो है वो गति है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से तदात्म्य चरम मोक्ष नहीं है, इससे तो श्रेष्ठ है अनंत वैकुंठ ग्रहों में से किसी एक भगवान की भव्य संगति। अथा अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि नारायण या भगवान सभी प्रकार की योग पद्धतियों तथा सभी प्रकार के मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर समझाया कि जितना भी ज्ञान है, जितनी भी तपस्या है, जितना भी योग है, उसके द्वारा गति क्या है, लक्ष्य क्या है, वो है भगवत प्राप्ति। और यदि किसी को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उससे बढ़कर और कोई भी लक्ष्य जीव का हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव आनंद चाहता है और आनंद केवल उसे सच्चित आनंद भगवान को प्राप्त करने के उपरांत ही प्राप्त होता है। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर और एकदम आप श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मा जी एक वास्तविक तथ्य बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार से भगवान के द्वारा ही सृजित हूँ और ये संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वो सब सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में ही उनकी ही प्रेरणा से उनसे ही प्रेरित होकर ये जगत जो है उसकी मैं रचना कर रहा हूँ। हर कुछ केवल उन्हीं के द्वारा सृजित है, लेकिन उन्हीं की सृष्टि की मैं खोज करता हूँ और उसको पुनः सृजित करता हूँ। वे कहते हैं तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षैवाभिचोदितः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षैवाभिचोदितः। अत्यंत ही सुंदर शब्द है। ब्रह्मा जी कहते हैं तस्यापि, तस्यापि मतलब तस्य यानी उनका निश्चित ही, उनका किनका, वह नारायण जिनकी बात कर रहे हैं कि नारायण ही हमारी गति है, नारायण ही योग साधना का लक्ष्य है, नारायण ही तपस्या का लक्ष्य है, उन्हीं नारायण की दृष्टुरीशस्य, दृष्टु मतलब देखने वाले का, ईशस्य मतलब नियंता, वही वास्तव में हम सबके नियंता हैं, वही हम सबको देखने वाले हैं। और कूटस्थस्य का मतलब होता है वो हमारी बुद्धि से समझे नहीं जा सकते। कूटस्थस्य का मतलब होता है भगवान जीव की कल्पना से अत्यंत ही परे हैं। जीव अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता कि वो अकेले ही आध्यात्मिक जगत में बैठे बैठे इतने सारे ब्रह्मांडों का किस प्रकार से सृजन करते हैं, किस प्रकार से जीव के ऊपर या प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और संपूर्ण जगत का सृजन संहार और पालन किस प्रकार से होता है, ये इतना महान कार्य भगवान किस प्रकार से करते हैं, ये हमारी बुद्धि के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको केवल शास्त्रों और प्रमाणिक साधनों के द्वारा श्रवण करके स्वीकार करना ही बुद्धिमानी का कार्य है। इसलिए जो
सर्वाधिक प्रमाण है ब्रह्मा जी स्वयंभू शंभू नारद। कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि 12 महाजनों में से जो कुछ बोला जाता है मतलब वही प्रमाण है। तो महाजनों में सर्वप्रथम है स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी आज हमें ये बता रहे हैं तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मना अखिलात्मना, मतलब वो भगवान जो है वो समस्त जीवों की आत्मा है। समस्त जीवों के अंदर जो चेतना का स्रोत है वो भगवान का ही एक अंश है। अगर भगवान नहीं है तो जीव का कोई महत्व नहीं है, भगवान नहीं है तो इस भौतिक जगत के किसी वस्तु का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अखिल आत्मना वो समस्त जीवों की आत्मा है, परमात्मा है। और वो क्या करते हैं, सृज्यम, उन्होंने सृष्टि की रचना पहले से कर दी है। सृज्यम मतलब पहले से ही सृष्टि की रचना की गई। वास्तव में ये बात है समझने की कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। जिस तरह से भगवान अनादि हैं, अनादि मतलब कोई ऐसी डेट फिक्स नहीं है कि उस समय पर प्रकृति का या पुरुष या जीव का स्टार्ट हुआ था। शास्त्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि कब जीव और प्रकृति बनी है, वो डेट भूल गए हैं, या वेद व्यास ने कभी ऐसा नहीं कहा, विस्मरणीय है, याद नहीं है, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा ये अनादि है, इसका कोई आदि नहीं। जिस तरह भगवान का कोई आदि नहीं है, उसी तरह जीव आत्मा का भी कोई आदि नहीं है, उसी तरह से प्रकृति भी अनादि है। ये सृजन होती है, संहार होता है, सृजन होता है, संहार होता है, कल्पक्षये पुनस्तानी कल्पादौ विसृजामि हम। तो ये बहुत ही समझने की बात है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हम क्यों गिरे, हम इस संसार में क्यों आए, या कब से गिरे। ये सब प्रश्न जो है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कब से हैं या हम क्यों हैं। महत्वपूर्ण तो इनका सॉल्यूशन है कि यदि हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं, यदि हम जन्म मरण के चक्कर में फंस गए हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने वास्तविक गति तक पहुंचे। बुद्धिमान व्यक्ति कीचड़ में गिरने के बाद ये कभी नहीं सोचता कि मैं कीचड़ में क्यों गिरा हूँ, बल्कि वो क्या सोचता है कि मैं इस कीचड़ से कैसे निकलूं। उसी तरह से भौतिक भवसागर में जब जीव गिर जाता है तो उस जीव को ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तो ये भौतिक जगत तो भगवान की पहले से रचना है, सृज्यम, ये रचा हुआ है, पहले से ही सृष्टि की गई है। सृजामि, उसको मैं खोजता हूँ। जब वो प्रलय हो जाता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी बारी आती है। पहले से ही सृजित की हुई सृष्टि को जब पुनः सृजन करना होता है तो सृजामि अर्थात मैं खोजता हूँ। सृष्टोहम, अहम कहकर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भी उन्हीं के द्वारा सृजित हुआ हुआ हूँ, मुझे भी उन्हीं भगवान ने बनाया है। और कहते हैं ईक्षया एव, ईक्षया मतलब झलक मात्र से, वो केवल दृष्टिपात करते हैं प्रकृति को और प्रकृति गर्भस्थ हो जाती है और इन समस्त जीवों की रचना पुनः हो जाती है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ, ईक्षयेवाभि चोदिता, उनकी झलक मात्र से ही यह सब प्रेरित हो रहा होता है। ये केवल उनकी दृष्टि से हुआ है, मतलब मुझे तो केवल निमित्त बना दिया भगवान ने, परंतु कर रहे सबको स्वयं ही है। अनुवाद देखिए, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले से जो सृजित हो चुका है उसी को फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी भी स्वीकार करते हैं कि वे असली सृष्टा नहीं हैं, अभी तो भगवान नारायण द्वारा प्रेरित प्रेरणा प्राप्त हैं। अतएव उन्हीं की अध्यक्षता में वे समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप उन्हीं के द्वारा पहले से ही निर्मित वस्तुओं का सृजन करते हैं। परमात्मा तथा आत्मा दोनों को
ब्रह्मांड के बड़े बड़े महापुरुषों तक ने जीव में निहित माना है। परमात्मा तो भगवान है, जबकि आत्मा भगवान का नित्य सेवक है। भगवान आत्मा यानी जीव को प्रेरित करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पहले से सृष्टि की है वह उसका सृजन करे, और भगवत कृपा से इस संसार में जो कोई किसी भी वस्तु की खोज करता है वह उसका खोजी मान लिया जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तविक तो सृष्टि भगवान ने कर ली है, लेकिन जीव क्योंकि भगवान का नित्य सेवक है तो भगवान उनको ये प्रेरणा देते हैं कि आप वस्तुओं की खोज करो। स्टार्ट में तो सृजन हो गया है, लेकिन जब किसी भी वस्तु को कोई साइंसदान जो है वो इन्वेंट करता है, वो बोलता है कि मेरे द्वारा ये बनाया गया है, लेकिन वास्तविक सृष्टा तो केवल भगवान है। लेकिन जो संसार में जो कोई भी किसी वस्तु की खोज करता है वही उसका खोजी मान लिया जाता है। कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से वहां था, और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा के बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। अभी सपोज अगर कोई बोले किसी को भारत के विषय में पता नहीं हो, या फिर पाकिस्तान के विषय में पता नहीं हो कि पाकिस्तान भी कोई भूगोल में कोई जगह है, और अचानक से कोई बड़ा कोई साइंटिस्ट लेकर आ जाए और बोले पाकिस्तान मिल जाए उसको, तो पहले से ही है ना, अगर पहले से ही कोई वस्तु है और उसको कोई खोज कर निकालता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसी ने उसको बनाया। अभी कोलंबस ने अगर अमेरिका की खोज कर ली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसको बनाया है, लेकिन खोज करके भगवान ने बस उसको श्रेय प्राप्त कर दिया। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता भी मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। अतएव मनुष्य को स्वेच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। इस तरह भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के प्रैक्टिकल है कि उन्होंने उनके जीवन में प्रैक्टिकल जितना समर्पण किया उतनी ही मात्रा में भगवान ने उनको श्रेय दिया। पूरा का पूरा समर्पित होकर 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में गए, जहाँ पर केवल पशु जीवन गुजारा जा रहा था, और पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित होकर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आपकी कृपा मुझे इन तक पहुंचानी है, आप मुझे माध्यम बनाओ कि मैं आपकी कृपा को जन जन तक पहुंचा सकूं। और आज विश्व जानता है कि प्रत्येक नगर और गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ यह महामंत्र गूंज रहा है, वो उसका पूरा का पूरा श्रेय भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को दिया। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिस अनुपात में वह भगवान के चरण कमलों के आत्मसमर्पण होता है उसी अनुपात में भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, अतएव भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यूं कहें कि यह प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। जैसा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं कि भाई इसमें 14 लोक हैं, उर्ध्व मध्य और जो नीचे लोक हैं, इतने पहाड़ हैं, सृष्टि में नदियां हैं, वृक्ष हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ हम ब्रह्मांड देख रहे हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी और ब्रह्मा जी ने वैसा का वैसा ब्रह्मांड का सृष्टि कर दिया। भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में करने के लिए प्रेरित किया था। श्रीमद् भगवद गीता 11.33 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, तस्मात्तमुत्तिष्ठया शूलभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राजं समृद्धम् मय्येवेति निहत्ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिन्। तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशोलभस्य, खाली तुम उठो बस, मेरी आज्ञा का पालन करो। यशोलभस्य, यश तुम्हें प्राप्त होगा। जित्वा शत्रुम, अपने शत्रुओं को तुम जीत लोगे। भुङ्क्ष्व राज्यम समृद्धम, और समृद्ध राज्य को भोगोगे। क्यों? क्योंकि मय्यह वेते निहत्ता पूर्व में, मेरे हाथों से ये पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ जो जीव के द्वारा भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, वो वास्तव में भगवान ने कर लिया है। जीव के अंदर शक्ति नहीं है कि भगवान की सेवा करे, लेकिन भगवान बस जीव के समर्पण को देखता है और जीव के सेवा भाव को देखता है। कर्ता वो स्वयं है और उस जीव को श्रेय देता है। निमित्त मात्रम भवसव्यसा, केवल जीव को निमित्त बनना होता है। सब करने कराने वाला भगवान ही होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सही कुरुक्षेत्र का युद्ध हो या किसी अन्य स्थान अथवा अन्य समय में लड़ा गया कोई युद्ध हो, वह भगवान की इच्छा से लड़ा जाता है। क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना कोई इतना बड़ा जनसंहार नहीं कर सकता। दुर्योधन के दल ने कृष्ण की महान भक्त द्रौपदी का अपमान किया था और द्रौपदी ने भगवान से तथा वहां पर उपस्थित सारे मूक दर्शनों से इस अनुचित अपमान से बचने के लिए याचना की थी। तब अर्जुन को भगवान ने सलाह दी थी कि वह लड़कर बदला ले, अन्यथा दुर्योधन का दल भगवान की इच्छा से किसी न किसी प्रकार मारा ही जाएगा। इस तरह अर्जुन को निमित्त मात्र बनने तथा भीष्म एवं कर्ण जैसे महान सेनापतियों का वध करने का श्रेय लेने के लिए कहा गया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब द्रौपदी का अपमान हुआ और द्रौपदी ने भगवान से अपने अपमान के बदले के विषय में बोला कि इन आतिथायों का अवश्य वध होना चाहिए, इनको इस अधर्म का अवश्य मिलना चाहिए सिला, तो फिर भगवान को तो उन अधर्मियों का नाश करना ही था। बस निमित्त बना दिया, अर्जुन को श्रेय दे दिया। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब भगवान की ही इच्छा से हुआ। कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कोटस अखिल आत्मना उसके विषय में बता रहे हैं कि भगवान ही प्रत्येक जीव की आत्मा है और जो भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं, भगवान उन्हीं भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें अपने संरक्षण में देते हैं। और जो भगवान की संरक्षण को स्वीकार नहीं करते, उनको भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अपितु पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैसे तो एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता, लेकिन भगवान उन भक्तों की सहायता करते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। बाकी जो भगवान की शरण में आना नहीं चाहते हैं, तो भगवान की माया जो है वो उनको अपनी शरणागत कर देती है और फिर जो वो करना चाहते हैं वो करते हैं और उसका दुष्परिणाम भी उनको भोगना पड़ता है। अतएव वे कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जो असामान्य दृष्टि में अत्यंत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। भगवान का एक नाम उरुक्रम है, जिसका अर्थ है वे जिसके कार्य अत्यंत ही अद्भुत हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, तो वो जो है वो सदैव भगवान के आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जब भगवान आदेश करेंगे तो उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, और जब भगवान उन्हें आदेश करते हैं तो पूर्ण सिंसियरली और बहुत ही सीरियस होकर वो प्रयास करते हैं और ऐसा कार्य कर देते हैं जो सबको आश्चर्यमय कर देता है। और जिस तरह से भगवान का नाम उरुक्रम है, जिसका अर्थ है वो जिसके कार्य अत्यंत ही अद्भुत हैं और जीव की कल्पना से परे होते हैं, अतएव भगवान के भक्तों के कार्य कभी कभी अत्यंत ही अद्भुत प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। ब्रह्मांड के सर्वोच्च बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चुंटी तक सारे जीवों की बुद्धि भगवान द्वारा सारे कार्यों के साक्षी रूप में देखी जाती है। भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन करता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जिसका प्रकार भगवान उरुक्रम है, अद्भुत कार्य करने वाले हैं, और जो भगवान के भक्त पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाते हैं तो भी वो ऐसे अद्भुत कार्य कर लेते हैं कि साधारण जीव इन कार्यों को देखकर अचरज में रह जाता है। और ये सारे अचरजमयी कार्य जब जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान उनको पूरा का पूरा अपना संरक्षण प्रदान करते हैं प्लस अपनी हेल्प प्रदान करते हैं। तो क्योंकि भगवान का निर्देशन होता है इसलिए अद्भुत सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी। और श्रील प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में कहते हैं, भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव उस बुद्धिमान व्यक्ति को होता है जो सोचने, अनुभव करने तथा चाहने के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन कर सकता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि भगवान के द्वारा इस रची हुई जो सृष्टि है उसको शास्त्रों के द्वारा समझकर, शुद्ध वैष्णवों के द्वारा समझकर और अपने प्रयास से इसको जानने का प्रयास करें कि ये पूर्ण जगत में जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही सृजन है। और ब्रह्मा जी जो हैं वो क्या करते हैं, जो सृष्टि पहले से भगवान ने की हुई है उसको दोबारा से सृजित करते हैं, और वो भी भगवान के आदेश, भगवान की कृपा और भगवान के निर्देशन से। तो जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो कभी भी भगवान के अतिरिक्त और किसी को सृष्टा या नियंता नहीं मानेंगे, वो भगवान की खोज करेंगे और भगवान के ही शरणागत होंगे। क्योंकि जब तक जीव भगवान के शरणागत नहीं होगा तब तक यूं ही अलग अलग भ्रांत धारणाओं में उलझ कर अलग अलग डेस्टिनेशन अपना गति समझेगा और अलग अलग बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा। इसलिए जीव को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि जीव मनुष्य बना है तो मनुष्य जीवन के सक्सेस होने का एक ही उपाय है कि हम भगवत प्राप्ति करें, हम जन्म मरण के चक्कर से छूटें, और उसका एक ही उपाय है कि हम भगवान की शरणागति में आएं। पहले हम भगवान को जानें और भगवान की शरण में आएं, इसी से हम सबका कल्याण होगा। और भगवान की शरण में आने का एक ही तरीका है इस कलयुग में, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।